भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज आगे आ जाइए बेटा आगे कम फॉरवर्ड आगे जगह है कम फॉरवर्ड और पंखा भी है यहां। आप लोग बहुत पीछे बैठे हैं, आप लोग को बेटा आगे आ जाना चाहिए ना, पीछे वाले बहुत पीछे वाला वो गुरु आगे आ जाए। कानन मत्त जी आगे आ जाओ, आगल में आओ। तो क्या टॉपिक आज डिस्कस करना है? हाँ, आज का सब्जेक्ट क्या है डिस्कशन के लिए? आप भाग्यशाली हैं, यू आर फॉर्चुनेट। एक बार प्रभुपाद के सामने भक्त बैठे थे और भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद हम बहुत भाग्यशाली है, वी आर फॉर्चुनेट। अब परिचित है ना प्रभुपाद से? परिचित है ना? हाँ, आप लोग प्रभुपाद से परिचित है? ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ जी संस्था जो पूरी संसार के अंदर है, उनका जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, श्रील प्रभुपाद जी महाराज। उन्होंने कहा, वो विदेश के लोग थे, अंग्रेज थे, उन्होंने बोला हम बहुत फॉर्चुनेट है, वही हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे को भगवान की भक्ति मिली है। तो प्रभुपाद महाराज ने जवाब दिया, आई मेड योर फॉर्च्यून, मैंने आपका भाग्य बनाया है। आप तो यहां पश्चात देश में पड़े थे कचरे के अंदर, हां मैं आया आपके यहां और आपका भाग्य मैंने बनाया। तो भाग्य बनता है, कौन भाग्य बनाता है किसी का? जिसका भाग्य बना हुआ होगा वो दूसरे का बनाएगा ना। जो जिसके हाथ खुले होंगे वो जिसके हाथ बंधे हैं उसको खोल सकता है ना, जिसके अपने हाथ बंधे होंगे वो दूसरे को कैसे खोले? तो जो भाग्यशाली होगा वो दूसरे को भाग्य बनाएगा ना, जो धनी होगा वो दान देगा, जो बलवान होगा वो किसी की रक्षा करेगा। तो संसार में जिसका भाग्य अच्छा होगा वही दूसरे का भाग्य बनाएगा ना। हम डॉक्टरों के अस्पताल में गए, हमने डॉक्टरों से पूछा कि आप पढ़ने के बाद क्या करने चाहते हैं? बोला हम दुखी लोगों को सुखी बनाना चाहते हैं। हाँ, बीमार लोग दुखी हैं, उनको सुखी बनाएंगे। तो हमने पूछा कि आपके पास सुख है क्या? तो बड़े डॉक्टर साहब चिंता में हो गए कि सुख तो हमारे पास भी नहीं है, तो फिर तुम दूसरों को कहां से सुख दोगे? तो जो वस्तु जिसके पास होगी वही देगा ना दूसरे को, तो बहुत सीधी सी बात है। तो भाग्य है, एक लक्ष्मी को कहते हैं भाग्य की देवी, हम भाग्य की देवी लक्ष्मी है। और वो किसके पीछे भागती है? नारायण के पीछे भागती है, उनके चरणों को कभी छोड़ती नहीं। भाग्य की देवी है लक्ष्मी, वो तो कभी नारायण के चरणों को छोड़ती नहीं। तो जो आदमी नारायण से अपना रिश्ता जोड़ लेगा तो लक्ष्मी उसके पास अपने आप आ जाएगी। इसलिए लक्ष्मीपति है ना, नारायण का नाम तो लक्ष्मीपति है, कमलापति उसको कहते हैं, कमलापति लक्ष्मीपति। तो अगर भगवान से आपका संबंध हो जाएगा तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, तो आपका भाग बन जाएगा। नहीं, सीधा सा फार्मूला है ना। भगवत गीता के आधार पे हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि आप भाग्यशाली हैं। भगवत गीता के छठे अध्याय से दो तीन श्लोक पढ़ के ये बात अपन समझने का प्रयास करते हैं कि आप भाग्यशाली हैं। ठीक है, उससे पहले एक श्लोक बहुत सुंदर चेतना महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमेते कोई भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमेते, ब्रह्मांड का मतलब है ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, इसको ब्रह्मांड कहते हैं, जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया। भ्रमेते, भ्रमण करने का मतलब घूम रहा है। कोई भाग्यवान जीव, कोई एक आधा भाग्यवान होता है, नहीं तो घूम तो बहुत रहे हैं। कोई भाग्यवान जीव, गुरु, हां, ब्रह्मांड भ्रमेते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि किसी के ऊपर कृष्ण कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो उसको गुरु मिलता है, साधु मिलता है। तो जीव तो बहुत घूम रहे, लेकिन भाग्यवान वो है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। बहुत से जीव है, आपको देखो ये भी बहुत बड़ा एक सेग्रीगेशन का एक एक, एक वर्ड होता है सेग्रीगेशन साइंस में। ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ओनली वन इज एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। हजारों नहीं, लाखों में से कोई एक सक्सेसफुल होता है, उसमें से एक इंसान बनता है। तो पहले तो पहली जो फर्स्ट स्टेज है उसमें पता नहीं कितने में से एक बनता है, क्योंकि उसमें सिर्फ बीज होता है, बाकी सब बेकार होता है। और ऐसे लाखों करोड़ों इकट्ठे हो जाएं, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे, ऐसे मनुष्य बनने के बाद भी हजारों इकट्ठे हो जाएं, उनमें से कोई एक होता है वो सीधे रास्ते पे चलता है। सीधे रास्ते में चलने का मतलब है किसी को दुख नहीं देना और अपनी मंजिल को सामने रख के चलना। जो अपने अपने ध्येय को साध के आगे चलता है उसको बोलते हैं सीधा आदमी। सीधे का मतलब है जो अपने ध्येय को, अपने मंजिल को सामने रखता है, इधर उधर भटकता नहीं है, उसको बोलते हैं सीधे सिद्ध। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे यततां पि सिद्धानां, ऐसे हजारों लोग सीधे रास्ते पे चलने वाले इकट्ठे हो जाए। कश्चित माम वेति तत्वतः, कोई एक आधा होता है, भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे ठीक तरह से जान लेता है, तो कोई एक आधा होता है। तो भाग्यवान कोई एक आधा होता है, बहुत सुंदर सा एक ये वर्णन मैं इसलिए करता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं इस संसार के अंदर। ये एक दो तीन श्लोक और सुन लीजिए। मुक्तानाम अपि सिद्धान असिद्धानाम नारायण प्रायण स्वदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। कितने ही मुक्त हो सकते हैं जो मुक्त पुरुष हैं और सिद्ध हैं, उनमें से कोई एक आधा होता है जो नारायण का शरण लेता है। ज्ञानी बहुत घूमते हैं संसार में, कितने बहुत से लाल कपड़े वाले महात्मा घूमते हैं, उनसे आप भाग्यशाली हैं क्योंकि वो मुक्त हो सकते हैं, वो सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन नारायण प्रायण नहीं है, भगवान नारायण का शरण नहीं लिया है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण प्रायण स्वदुर्लभ है, ऐसा आदमी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। प्रशांत आत्मा जो बहुत शांत है, एक विष्णु का मंत्र पढ़ते हैं पंडित आपस में, शांताकारम भुजक्षयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। पहला है क्या, पहला शब्द क्या है, शांताकारम, शांत। जो जिसको शांति है उसके पास बैठोगे तो शांति मिलेगी ना। तो प्रशांत आत्मा वो है जो भगवान जो शांत है उससे अपना संबंध स्थापित करता है। इसके बाद है धर्मचारी मध्य बहु, धर्मचारी मतलब कम से कम धर्म के ऊपर चलने वाले, जो हम कहते हैं कि भाई कहते हैं हम किसी धर्म में चलते हैं, कोई एक तो नास्तिक होते हैं एक जो आस्तिक होते हैं, वो धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, बहुत से लोग होते हैं जो कर्मनिष्ठ होते हैं, कर्म करना चाहते हैं, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे बहुत सारे कर्म करने वालों में कोई एक आधा ज्ञानी होता है करोड़ों में, कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त, ऐसे कई ज्ञान इकट्ठे हैं उनमें से कोई एक आधा मुक्त होता है, मतलब बंधन से छूटता है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, कोटि मुक्त मध्य ऐसे करोड़ों मुक्त हो गए हैं जो पहले, एक कृष्ण भक्त, मुश्किल से एक दुर्लभ है भगवान का भक्त मिलना। और फिर ये है साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख, कोई आदमी साधु के संग में आए और कृष्ण की तरह शास्त्र के मार्ग से चले तो बड़ा भाग्य है, यही जीवन स्तारे, ऐसा वही आदमी संसार के दुख से मुक्त होता है। इसके बाद ये ब्रह्मांड ब्रह्मते कोई भाग्यवान जीव, इसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की कृपा कैसे होती है, ऐसी भगवान की कृपा तो बरसती है लेकिन कौन उसको कैच करने के लिए बाहर जाता है। भगवान की कृपा तो सदा के लिए बरसती है, उसकी कृपा कभी बंद नहीं होती है। तो भगवत गीता के छठे अध्याय में अर्जुन एक दो प्रश्न पूछता है, पहला प्रश्न के ऊपर अपन चिंतन आज नहीं करेंगे, वो प्रश्न है मन का, तो मन वश में नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा प्रश्न जो अर्जुन पूछ रहा है वो कह रहा है ठीक है हम प्रयास करते हैं, हम प्रयास करते हैं भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन पूरा तो नहीं कर पाते, किसी कारण से बीच में रह जाता है। तो फिर ऐसे तो नहीं है कि हमने पूरा जीवन लगा दिया जो मंजिल भी प्राप्त नहीं हुई, हाँ न संसार का सुख मिला और न राम मिला और न दाम मिला, ऐसे बीच में तो भटक नहीं जाएंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें, तीसरे साल के बाद छोड़ के घर चले जाएं तो आपको डॉक्टरी की डिग्री तो नहीं मिलेगी ना, तीन साल भी गए और कुछ मिला भी नहीं, हाँ फाइनल ईयर तक पढ़े और एग्जाम दे के सर्टिफिकेट नहीं ले तब भी तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। पांच साल भी जाए और फिर उसको छोड़ के आ जाए तो साल जिंदगी के ईयर्स भी गए और कुछ रिजल्ट भी तो नहीं मिला ना, तो ये परेशानी वाला काम है ना। कि भगवान आपका हम योग करने लगे, आपसे जुड़ने का प्रयास भी करें, बड़ी कोशिश भी करें, निष्ठा के साथ चले, बीच में कुछ रह जाए, तो ऐसे तो नहीं है न मंजिल मिले न आप मिले और न संसार का सुख मिले, जिंदगी की भी ऐसी बीत जाए दोनों जान से जाए, ऐसे तो नहीं है। ये अर्जुन का बहुत अच्छा प्रश्न है, नहीं अच्छा प्रश्न है ना। अब भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं वो अपन आज पढ़ेंगे। भगवान का उत्तर बहुत सुंदर है, देख लीजिए ये दो तीन श्लोक बड़े सावधानी से समझने का प्रयत्न। इस प्रश्न पूछने के बाद देखिए एक बात और यहां समझने की, इसलिए बोलता हूं, कभी आदमी प्रश्न तो पूछता है लेकिन जो उत्तर देगा उसके ऊपर विश्वास है कि नहीं है ये तो पता नहीं। आप मेरे से प्रश्न पूछे लेकिन आपको ये विश्वास थोड़ी है कि मैं जो उत्तर दूंगा वो सही होगा, ये आपका मेरे ऊपर विश्वास तो होना चाहिए ना पहले। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार राजस्थान में अकाल पड़ा, बरसात नहीं हो रही थी, तो लोगों को किसी ने कहा कि आप एक महाराज रहते हैं, बहुत बड़े महात्मा संत हैं इधर, उनके पास जाइए, वो भगवान को प्रार्थना करेंगे तो वर्षा हो जाएगी। तो लोग इकट्ठे होकर पंचायत चले गए महाराज के पास। बोला महाराज हमने सुना है आपकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं, हमारे देश में बहुत अकाल पड़ा है, आप कृपा करके भगवान को प्रार्थना कीजिए हमारे यहां वर्षा हो जाए। तो महाराज ने उनकी तरफ देखा, बोला छाता लायो, घर में अपना हल तैयार करके आए हो, बीज संभाल के रखा है। तो सब ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं। बोला आपको अगर ये विश्वास था कि मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा और बरसात आएगी तो कम से कम आप तैयारी तो करके आते, छाता तो साथ लाते, अपने खेत के अंदर हल को रख के आते, बीज तो घर में खरीद करके रख के आते। तो वैसे टाइम पास करने के लिए मेरे पास आ गए, अभी महाराज भार उतार के महाराज के ऊपर डाल देंगे, अब महाराज काम करता रहेगा, हम सो जाएंगे। प्रायः संसार में लोग साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, महाराज आप कृपा करके ये सब काम करा, अरे भाई तुम भगवान का नाम जप, महाराज जब आप भी जप लेना। एक बड़ा संत, बड़ा अच्छा सज्जन पुरुष संत था, उसके पास एक बेचारा संसारी आदमी आया करता था सत्संग में, बहुत दूर से आता था। तो एक बोला महाराज बहुत दूर है, सत्संग बड़ा अच्छा लगता है आपका लेकिन आने में बहुत देर लगती है, कैसे आऊं? बोला बेटा घोड़े के ऊपर या गधा कुछ भी हो, किसी सवारी के ऊपर चढ़ के आ जाया करो ना। तो इतना बेचारा बोला महाराज हमारे लिए घोड़े भी आप, गधे भी आप हो। हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे, सब कुछ हमारे लिए है आप। अरे भाई आपको प्रयास करना पड़ेगा ना। साधु सीढ़ी रख के देगा छत के ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन चढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, तो प्रयास तो आपको पड़ना है। एक वो राजस्थान में गर्मी का बहुत दिन था, मई जून का महीना था, चूल्हे के ऊपर माता जी रोटी बनाया, रोटी बनाने के बाद थाली में परोस के अपने पति जी के सामने रखा लाके, और फिर एक हाथ से पति को प्रेम से खिला रही है, एक हाथ से उसको पंखा लगा रही है, तो भी पति को पसीना आ रहा है। तो पूछती है गर्मी में पकाया मैंने, खिला मैं रही हूं, पंखा मैं झेल रही हूं, आपको पसीना पतिदेव तो के चबा तेरा बाप रहा है। अरे भाई चबाने की तकलीफ तो करनी पड़ेगी ना। नहीं तो भाई देखो सत शास्त्र छाप दिए, बड़े बड़े मंदिर बना दिए, सत्संग करके प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन भाई एक माला भगवान के नाम की तो आपको चबानी पड़ेगी कि नहीं, थोड़ा तो पसीना आएगा कि नहीं आएगा, सारा प्रबंध तो कर दिया है लेकिन कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा कि नहीं, के सभी तो नहीं अपने आप होगा। नहीं तो ये दूसरा प्रश्न पूछने के बाद अर्जुन एक बात कहता है विश्वास की कि भगवान आपके अलावा मेरे संशय का समाधान करने वाला और कोई नहीं, आपके अलावा और कोई मेरे संशय का समाधान नहीं कर सकता, मैं आपके शरणागत हूं, आप मुझे कृपा करके कुछ बाकी नहीं बचे संपूर्ण रूप से मेरा मार्गदर्शन कीजिए, अशेषतः मतलब कुछ शेष बाकी नहीं बचे, पूर्ण का पूर्ण मुझे बता दो, क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे शंका का निवारण कर सकते। तो अर्जुन प्रश्न पूछने के बाद अपना भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, ये अर्जुन भगवान को बता रहा है। बड़े सुंदर शब्द अर्जुन ने बोले, एतत् मे संशयम्, एतत् मे संशयम् कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ये मेरा संशय है, ये मेरे को शक है, आई हैव दिस डाउट, चेतुम अरस्य अशेषेण, बाकी इसमें कोई शक नहीं बचे ऐसी कृपा कीजिए। अरे भाई क्यों, त्वद अन्य तुम्हारे अलावा संशयस्य, इस संशय का कोई समाधान कर दे मुझे नहीं दिखता। चेता नहि उपपद्यते, अरे भगवान वाह आपके अलावा और कोई मेरा इस संशय को निवारण नहीं कर सकते, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो प्रश्न पूछने के बाद विश्वास भी होना चाहिए, तभी उत्तर अगर कोई देगा तो समझ में आएगा। तो भगवान का उत्तर क्या है सुनिए, पार्थ, भगवत गीता में सबसे ज्यादा संबोधन अर्जुन को भगवान ने पार्थ के नाम से किया। क्यों? इसलिए कि जब भगवान को अर्जुन की कोई बात बहुत अच्छी लगती थी जब शिष्य की, जब बेटे की कोई बात अच्छी लगती है ना, तो प्रेम का भाव दिल में उमड़ आता है पिता के या गुरु के, तब उसको संबोधन करता है। दो शब्द इसमें बहुत सुंदर है। सबसे ज्यादा भगवान को कृष्ण की कोई बात, अर्जुन की बात अच्छी लगती थी भगवान को, तो बहुत प्रेम से कंधे के ऊपर ऐसे हाथ रखे कहते पारथ, सबसे ज्यादा संबोधन पारथ है। और दूसरे नंबर पे कौन थे, दो नंबर, दो ये नाम अर्जुन का भगवद गीता में सबसे ज्यादा आएगा, बाकी और भी है, लेकिन ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम की भाषा में भगवान बोलते हे पारथ, न यह, न इस दुनिया में, न म उत्र, और न ही उस दुनिया में। हे पारथ, इस दुनिया में भी न, इस दुनिया में न, उस दुनिया में, हां, न एह न महोत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं हो सकता। किसका? जो योग का अभ्यास करे, भले पूर्ण नहीं करे, आधे में कहीं रह भी जाए ना, तो उसका विनाशस्तस्य न, उसका विनाश नहीं होगा। हां, उसका क्या नहीं होगा? विनाशस्तस्य न विद्यते, उसका विनाश नहीं होगा। फिर क्या होगा भगवान? फिर बहुत सुंदर शब्द भगवान कहते, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तात दूसरा शब्द है। तात कहते हैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को तात कहते हैं, बहुत प्रेम करते। तात, तात का मतलब मेरे बच्चे, जिसे आदमी प्रेम करता है, ये प्रेम। हे अर्जुन, कल्याण कृत कश्चित, जो कल्याण का काम करता है। कल्याण का अर्थ होता है कोई किस शुभ कार्य करना, कल्याण कार्य, कल्याण का मतलब शुभ करना। तो कल्याण कृत कश्चित, कभी भी कल्याण का काम, दुर्गति, उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। वो आदमी कभी भी, उसका नुकसान नहीं होगा, उसका हमेशा भला ही होना है। अच्छा काम करने वाले को कभी नुकसान नहीं हुआ। कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, तो दुर्गति नहीं होगी तो क्या सदगति होगी? भगवान जरा बताइए भाई, दुर्गति नहीं होगी तो सदगति भी तो होनी चाहिए ना। ऐसे कभी कहते हैं, जेल के अंदर से आदमी बाहर निकले, 14 साल सजा किसी को हो जाए, जेल से बाहर निकल के आए और दरवाजे के ऊपर आए और कोई संसार का आदमी, उसका मित्र बंधु बांधव मिलने वाला नहीं हो, तो बाहर आके तो वहां पागलों की तरह लगेगा। इससे बोला, इससे तो अच्छा था 10-12 आदमी तो अंदर मेरे को जानते थे। तो सदगति अगर नहीं हो, ये मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हम जेल में प्रचार करने जाते हैं, एक माता जी मिली, वो बोला हमारे को 14 साल हो गए, हमारे को पति के मारने में इसकी सजा दे दी, 14 साल के अंदर डाल दिया, हमने मारा भी नहीं था, लेकिन अब बाहर जाए सब मर गए, खप गए, कोई हमको पहचानेगा नहीं, कोई हमको अपनाएगा नहीं, बाहर किसके पास जाए? अब इधर ही ठीक है, अंदर ही सबकी रोटी, एक मन आटा रोज गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, ये बंदियों को खिलाते हैं, अपना जीवन यही पूरा करना है, बाहर नहीं जाएंगे। अब भर जा करें क्या? और इस विशेष रूप से जो कारागार में स्त्रियों के कारागार है, जहां लेडीज जेल में हम गए हैं, वो बड़े दुखी हैं कि बेचारों के ऊपर कोई आरोप लगता है ना, तो न उसके माता पिता लेने के लिए आते हैं, न ससुराल के परिवार आते हैं, और बेचारी बाहर निकलने बाद कहीं जाने को तैयार नहीं, बोलते हम यहीं बैठिए, क्या करें बाहर जाकर, अभी कोई संसार में स्वीकार ही नहीं करता। तो दुर्गति नहीं तो सदगति भी तो होनी चाहिए ना। कोई बाहर निकलने बाद अगर आदमी मिलने वाला भी नहीं आए, दरवाजे के ऊपर खड़े इधर उधर देखते हो, मतलब जाओ बाहर जाओ, अरे अंदर रोटी तो मिलती, बाहर रोटी कहां से खाएंगे? हाँ, तो ये बहुत बड़ी सदगति तो होनी चाहिए ना। दुर्गति नहीं हुआ होना, ये तो न्यूट्रल बात है कि ठीक है, कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन अच्छाई तो कुछ मिलनी चाहिए ना, बड़ी प्रयास किया था कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो दो श्लोकों में भगवान फायदा क्या होता है, एक आदमी जैसे अभी आप बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, यहां पढ़ने आए हैं, हॉस्टलों में रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल यहां रहेंगे, आपको अच्छा संघ मिल गया, मंदिर में आप आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, प्रसाद पा लेते हैं, लेकिन यहां से जाएंगे, किसी को कहीं नौकरी मिल गई, कोई कहीं कारोबार में चला गया, तो थोड़े दिनों के लिए तो आपने भक्ति की ही, लेकिन उसके बाद कुछ आप में से हो गए कि घर में कंटिन्यू कर सकें, कुछ नहीं भी कर सकेंगे, ऐसे भी होगा, हाँ, ऐसे ये संभव है, पता नहीं कौन सी स्थिति से गुजरना पड़े, कोई तो वीर पुरुष होगा इस चीज को छोड़ेगा नहीं, लेकिन कोई नहीं भी कर सकता है। तो जो थोड़ी देर के लिए भक्ति करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं बीच में, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, 2-4 साल 5 साल कर लिया, उसके बाद कुछ दिनों के लिए भुला लिया, तो उनका क्या गति होगा, उसकी पहले भगवान वर्णन करते हैं। और दूसरे श्लोक में वर्णन करते हैं, जो 90% कर चुका था, 10% बाकी बच गया था कि 5% बच गया था और पूरी नहीं कर पाया किसी कारण, तो उसका क्या होगा? तो दो का वर्णन अलग अलग है। तो पहला वाला वर्णन है उसमें कहते प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, वो लोग जो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं उनको प्राप्त होता है क्या? जो बहुत पुण्य करते हैं दुनिया में, ऐसे लोक प्राप्त होके, पुण्य करने वालों के लोगों में जब बहुत लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, उनको सुख के लिए बहुत अच्छा सा स्थान मिलता है, पुण्य लोक मिलते हैं, वो पुण्य लोक उनको मिलेंगे। तो वो क्या करेंगे वहां? वहां बहुत शब्द लिखा है, उषित्वा शाश्वती ही समाह, उषित्वा वो उठ के ऊपर जाएंगे, उसका ऊपर की तरफ गमन होगा, आगे बढ़ेंगे, बहुत प्रगति करेंगे। उषित्वा शाश्वत, शाश्वत मतलब बहुत समय तक सुख भोगेंगे। शाश्वत का मतलब ये 50-100 साल वाली जिंदगी नहीं, हजारों लाखों साल वाली जिंदगी। शाश्वत मतलब जिसकी बहुत दीर्घ समय तक, बहुत जिसको कहा जाए हजारों वर्षों तक। हाँ, क्या क्या शब्द है? शाश्वत समा, समा मतलब समय। शाश्वत, शाश्वत किसको कहते हैं? जिसका जो बहुत लंबा चौड़ा हो, कभी उसमें कमी नहीं आए, शाश्वत, एटर्नल। वैसे एटर्नल शाश्वत का अंग्रेजी में एटर्नल कहते हैं। तो ऐसे लोग जैसे ब्रह्म लोक है, सत्य लोक है, ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत समय तक आदमी सुख का भोग कर सकता है, वहां जाते हैं। फिर क्या होता है उसके बाद, जब वहां से लौटेंगे, बहुत समय तक वहां का सुख भोगेंगे, फिर वापस, क्योंकि भक्ति तो यहां की थी ना संसार में। अब क्यों आदमी छोड़ता है भक्ति, इसमें समझने की एक बात है। छोड़ता क्यों पता है? छोड़ता यह है इसलिए है कि अभी उसको संसार में कुछ भोग करने की इच्छा होती है, कुछ भोग करने की इच्छा होती है तो योग को छोड़ देता है। जब आदमी भोग की तरफ जाएगा तो योग छूट जाएगा। तो क्योंकि भोग की इच्छा होती है और भगवान इच्छा सबकी पूरी करते हैं, तो उसको भोग के लिए इस संसार के तुच्छ भोगों से ऊपर उठा के महान भोग जो दिव्य लोकों में होते हैं वहां पुण्य लोकों में ले जाते हैं, जहां वो असली ऐसा भोग करे, ऐसा भोग करे कि फिर उसको भोग करने की कोई इच्छा बाकी बचे ही नहीं। यहां भोग काय का है? हाँ, यहां तो रोग है, भोग में यहां रोग है। यहां भोग करोगे तो रोग होगा, लेकिन वहां रोग होता ही नहीं है। तो वैसा उसको पहले भगवान भोग का, बहुत समय तक भोग करने का, दिव्य देवताओं के लोगों के भोग का समय देते हैं। फिर क्या होता है? वापस आएगा यहां, क्योंकि अब उसको भोग की बाकी इच्छा नहीं बचेगी। सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, इस संसार में आएगा तो श्रीमताम गेहे, गेहे का मतलब घर में, श्रीमताम का मतलब जो धन संपन्न वाला घर है, जिसको फिर कमाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, कुछ ज्यादा संसार के अंदर परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, सब सुविधाएं उसको पहले ही मिली होती हैं। लेकिन कौन सा वाला श्रीमताम? बोला सुचीनाम, सूची नाम माने जिसके बाद पवित्र धन है, नहीं तो प्रायः जो धन होता है, एक बाप बेटे से पूछा, पिताजी अपने घर में ये सब इतना सारा सामान कहां से आया, इतना बड़ा धन कहां से आया, बड़ी कोठी, तो शरात का समय था, पिताजी ने मेन स्विच को ऑफ कर दिया और फिर चुप करके बैठ गया। पिता, बेटा बोलता है बाबा बोलो ना। बोला बोलूं क्या बेटा, देखता नहीं है क्या? बोला क्या देखूं? बोला ब्लैक, लाइट चली गई, अंधेरा है, मेन स्विच ऑफ, ब्लैक है बेटा, सब काम ब्लैक। तो सूची नाम नहीं है वो, तो ऐसे घर में जन्म लेने वाला बदमाश बनेगा पहले नंबर का, जो पैसा ही बेईमानी का है वो कहां से ईमानदारी के रास्ते पे चलने देगा। वो लोग तो संसार के अंदर आतंकवादी बनेंगे कि दूसरों का दुख खराब करेंगे, असुरी प्रवृत्ति के लोग बनेंगे, ऐसा सूची नाम। लेकिन जो पवित्र धन बड़े पवित्रता से अर्जित किया गया है, ऐसे संत ऐसे बड़े धर्मात्माओं के घर में उसका जन्म होता है, और उसको फिर कुछ संसार में कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर अपना जहां उसने योग छोड़ा है ना, वहां से आगे योग को करने का प्रयास करता है। फिर अपनी भक्ति, क्योंकि उसने भोग तो पहले कर लिए, अब कुछ कमाने की परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो भगवान की भक्ति जहां छोड़िए वहां से आगे करेगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा पहले कर चुका है, थोड़ा बच गया है, उसके लिए कहते हैं अथवा, नहीं तो, अगर ऐसा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास किया है तो फिर अथवा अथवा योगीनाम एव कुले भवंती धीमताम, नहीं तो उसका जन्म कहां होगा? योगी के कुल में। कौन सा वाला योगी? ऐसे जो लाल कपड़े वाले बाजार में घूम रहे हो? नहीं, बोला धीमताम, बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है तो बुद्धि कहां से आएगी? कोई पूछे तो ददामी बुद्धि योगम तम, जो भगवान से, जिसको बुद्धि प्राप्त होगी। तो भगवान से बुद्धि किसको प्राप्त होती है? भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम से भगवान का भजन करते हैं। ऐसे महात्माओं के घर में जन्म होगा। फिर एक आदमी ने कहा, अरे महात्मा तो सन्यासी होते हैं, उसके घर में जन्म कैसे होगा? एक सन्यासी को बोला, महाराज हमारी सभा के पति बन जाओ। बोला किसी का पति नहीं बनूंगा, चाहे वो सभा भी हो। सन्यासी जो हुआ ना, पति कहां से बनेगा? पंचपति नहीं बन सकता वो, सभापति बनो भाई। बोला सभापति नहीं बनूंगा। तो इसका अर्थ क्या है? यहां शब्द लिखा है कुले भवती धीमताम, योगी के कुल में, बुद्धिमान योगी के कुल में उसका जन्म होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गुरुकुल कहा करते थे, ऐसे गुरु के कुल में उसका प्रवेश होगा, जो बुद्धिमताम, जो भगवान से प्रेम करने वाला महात्मा होगा, और उसके संरक्षण में आने से उसके अगले जन्मों का, जब बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्च्यून होता है, जो उसका सौभाग्य होता है, तब ऐसे किसी योगी के कुल में प्रवेश मिलता है। तो आप लोग इसलिए भाग्यशाली हैं कि ऐसा धीमताम, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा बहुत ही भगवान का प्रिय, भगवान से प्रेम करना, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये इस्कान उसका कुल है, ये उसके कुलपति है। कुलपति का मतलब वाइस चांसलर, ये पूरे इंस्टीट्यूट के ये कुलपति हैं। जो भी इसमें प्रवेश करता है इस यूनिवर्सिटी में, हम एक्चुअली इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस एक साइंटिफिक टीचिंग इंस्टीट्यूट है। हम एक साइंटिफिक टीचिंग यूनिवर्सिटी है। हमारा आध्यात्मिक आत्मा की शिक्षा देने का बहुत बड़ा विश्व में केंद्र है। तो उसका कुलपति जो वाइस चांसलर, जो कुल का गुरु है सारा, तो इस पूरे कुलपति वो है। तो जो इसमें प्रवेश करता है, इस बात से सिद्ध होता है भगवद गीता की, कि उसने पहले बहुत तप योग किया हुआ है, बहुत भाग्यशाली है कि उसको ऐसे महान कुल में प्रवेश मिला है। कोई आदमी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, हाँ लीड्स में एडमिशन मिल जाए, तो फिर आदमी अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। यहाँ भी किसी को बिट्स पिलानी में एडमिशन मिलती है या IIT खड़गपुर में मिलती है, तो समझता है कि मैं बहुत अच्छा, मेरे को कैरियर मेरा अच्छा बन गया। तो ये संसार में जैसे ऐसे यूनिवर्सिटी में कैरियर अच्छा बनता है, ऐसे आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में अगर इस्कान यूनिवर्सिटी में किसका प्रवेश होता है, तो ये जैसे भौतिक में IIT और बिट्स का नाम है, इस तरीके से आध्यात्मिक में ये बहुत महान, अपने आप में मोस्ट फॉर्चुनेट जो आदमी है वो इधर प्रवेश करते हैं। बहुत फॉर्चुनेट आदमी को यहाँ प्रवेश मिलता है, क्योंकि ये तो उन लोगों के ही प्रवेश इसमें होगा। मोस्ट फॉर्चुनेट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल जो होंगे, भगवद गीता किसी आम साधारण गली में चलने वाले लोगों के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। आत्मा का दुर्भाग्य संसार में ये है कि इतने सारी यूनिवर्सिटियां हैं, इतनी सारी ही विश्वविद्यालय हैं, लेकिन किसी में भी आत्मा का ज्ञान तो नहीं सिखाया जाता है। जो हमारा वजूद है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा एग्जिस्टेंट है, जिसके ऊपर हम जी रहे हैं, उसकी तो हमें जानकारी है नहीं। किसी को पूछा भाई तुम कहां रहते हो? बोला उसके घर के पास। बोला वो कहां रहता है? वो मेरे घर के पास। अरे भाई तुम्हारा घर है कहां? तो अपना हमको पता नहीं है, तो अपना ही पता नहीं है। तो स्वयं की पहचान जो कराए, वैसी यूनिवर्सिटी दुनिया में है नहीं जहां चरित्र सिखाया जाता है। देखो संसार में ये तो बहुत बड़ी कहावत आपने सुनी होगी, हाँ, वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, धन का नाश हो गया तो कोई बात नहीं दोबारा कमा लेंगे, हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, स्वस्थ अगर चला गया तो कुछ हानि जरूर हुई, करैक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट, चरित्र जला गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। तो कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें चरित्र क्या शिक्षा दी जाए कि आपको गलत रास्ते से जाने से बचाया जाए, ऐसा कोई विश्वविद्यालय संसार में नहीं है। इसलिए हमने स्टूडेंट के लिए स्पेशली यूथ फोरम खोला है, साइंटिस्ट के लिए भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट खोला है जहां पीएचडी करते हैं बिरस पिलानी के लड़के कॉन्शियसनेस में, एमएससी और पीएचडी कॉन्शियसनेस में करते हैं कि चेतना क्या है, चेतना क्या है, चेतना चेतना तो आत्मा से आती है, संसार शरीर से नहीं आती है, तो चेतना की कॉन्शियसनेस उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए एमएससी और पीएचडी बिरस यूनिवर्सिटी की बिरस पिलानी की एफिलिएशन से हम करते हैं, हमारा भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट करता है। तो हम तो साइंटिफिकली हम तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज साइंस, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हाँ, जो आप पढ़ रहे हैं वो जरूरी है आपको शरीर को चलाने के लिए, आपका ये शरीर है, इस शरीर से आपके माता पिता का दायित्व है, कल आप विवाह करेंगे तो आपका पुत्र परिवार बनेगा, उनका पालन पोषण करने है। तो इसके लिए कोई ना कोई संसार का आपको ज्ञान होना चाहिए जिससे आप नौकरी करें अथवा बिजनेस करें कि इस शरीर को चला सकें, लेकिन इस शरीर का अस्तित्व तो आत्मा के ऊपर आधारित है। कोई आदमी मर जाता है तो लोग कहते हैं वो चला गया, ऐसे बोलते हैं ना भाई, ओ गोपाल भाई तो चलोगे हो चालियो, हाँ चालू क्या बोलते हैं, चला गया क्या बोलते हैं, चाली गया गोपाल तो उधर ही पड़ा होता है, हाँ वो शरीर तो उधर पड़ा होता है कि नहीं, कि शरीर उड़ जाता है ऊपर, नहीं उड़ता है ना, तो कौन सा गोपाल चला गया फिर, तो इसका मतलब किसका नाम गोपाल था, वो शरीर का नाम तो नहीं था ना, वो तो उधर ही पड़ा होता है, उसको तो उठा के जाते हो, उसको उठाओ, उसको निकालो, इसको निकालो, अरे पहले उसको बोलता आओ आओ इसको घर में बिठाओ, जब उसमें से कोई चीज निकल जाती है तो कोई घर में उसको रखता नहीं है, पर ले जाओ उसको, एक घंटा एक दिन घर में रखने को तैयार नहीं है, सारी उम्र जिसने कमा के खिलाया, जिसने सारी उम्र आपका पालन पोषण किया, कोई चीज उसके अंदर से निकल जाने के बाद आप बोलते इसको उठाओ, इसको उठाओ, यहां से निकालो, कोई उसको रखने के लिए तैयार नहीं है क्यों, चाहे सुंदर स्त्री का शरीर हो या बहुत सुंदर लड़के का हो या बहुत सगे संबंधी का, घर में कोई क्यों नहीं रखता है, तो हमारा रिश्ता तो शरीर से नहीं है, हमारा रिश्ता तो आत्मा से, आत्मा निकल गई तो शरीर से तो भूत भूत करते, कोई उसके निकलने नहीं जाता है। नहीं तो उस आत्मा जिसके सहारे ये सारा संसार चल गया, हमारा रिश्ता है, उसका ज्ञान कहां से मिलता है, कोई है यूनिवर्सिटी ऐसी, इसलिए ये ऐसा कुल है, हमारी ये यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, सब जगह इसकी शाखाएं हैं जहां फॉर्चुनेट लोगों को प्रवेश मिलता है। कौन से फॉर्चुनेट, जो कई जन्मों से बड़ा तप करते हुए आ रहे हैं, योग अभ्यास करते हुए आ रहे हैं, नहीं तो मुख के जबान के ऊपर भगवान का नाम आएगा नहीं, आप कितना भी प्रयास कर लो भगवान का नाम जबान पर नहीं आएगा, वो तो उसी के जबान पे आएगा जिसने तीर्थ जप तप यज्ञ योग साधन सब कर लिया है अपने बहुत गुजरे हुए जन्मों में, तभी उसके मुख में ये चीजें उतर के आती है। तो आप भाग्यशाली हैं, आप फॉर्चुनेट हैं कि कैसे भी ये न केन प्रकारेण बहुत ही शुद्ध, बहुत शुद्ध चेतना महाप्रभु भगवान स्वयं श्री कृष्ण के इस आध्यात्मिक आंदोलन कृष्ण भावना अमृत संघ के संपर्क में आए हैं। अब आप इस अपने भाग्य को ठीक तरह से बना के रखने के लिए और ज़्यादा इसको समझने के सीखने का प्रयास कीजिए। जैसे यूनिवर्सिटी में अपना अभ्यास करना जो जरूरी है, एक साल के बाद परीक्षा होगी उसमें उत्तीर्ण होना है, हर एक को परीक्षा देनी पड़ती है ना, आप जो पढ़ रहे हैं कुछ भी तो परीक्षा देनी पड़ती है, साल तो कैसे पास तब होते हो जब बार बार याद करते हो तब ना, तो संसार में एक परीक्षा सबको देनी पड़ती है, इस पर ये जो अभी आप परीक्षा देंगे इसकी तो डेट अनाउंस होती है ना, आपकी डेट अनाउंस होती है, प्रिपरेशन का टाइम भी मिलता है ना, हाँ, और तब जब डेट आ जाती है तब आप थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, अब बोलो यार बस घूमना फिरना बंद करना, अब तो पढ़ना है, अब तो डेट आ गई है ना, फिर तो तैयारी करना शुरू करते हैं और फिर एग्जाम के अंदर बहुत अभ्यास करते हैं, बार बार उसको याद करते हैं ताकि जब पूछेगा तो एग्जामिनर बता देंगे अथवा कोई प्रश्न आएगा तो उत्तर लिख लेंगे, है ना। एक और भी इम्तिहान है, एक और एग्जाम है जो सबको देना पड़ता है, एक और परीक्षा है जो सबको देनी पड़ती है, वो अंत समय की परीक्षा है जिसकी अनाउंसमेंट भी नहीं होती है, प्रिपरेशन टाइम भी नहीं मिलता है। मौत न पूछे, मूरत न पूछे, तिथ न वार, कोई तिथ वार नहीं होता है उसका, वो तो अचानक आ जाता है। अचानक आ जाता है तो उस वक्त तैयारी जिसकी होगी वही उत्तीर्ण होगा, वही पास होगा। और उस वक्त तैयारी क्या होनी चाहिए? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम, अंत समय में जिस चीज का भाव करोगे ना उसी चीज को प्राप्त करोगे। तो अभी से अगर आप अभ्यास जैसे अपने परीक्षा की तैयारी का करते हो, ऐसे रोज का आधा घंटा निकालकर भगवान के नाम के जप का अभ्यास करते रहोगे, भगवान के नाम के जप का अभ्यास करोगे तो वो जब परीक्षा होगी तब आपके मुख से निकल जाएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उस वक्त उत्तीर्ण हो जाएंगे। उस वक्त फिर आपकी एग्जाम में आप फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त अगर ये शब्द मुख पे नहीं आए और कुछ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। उस वक्त भगवान का नाम उसको आएगा जिसने अभ्यास किया होगा। एग्जाम में वो पास होगा जिसने पूरा साल मेहनत की होगी, जिसने पूरी जिंदगी में अभ्यास किया होगा वही उत्तीर्ण होगा, ये निश्चित रूप से, इसका और कोई रास्ता नहीं। उस वक्त क्या होगा ये कुछ पता नहीं लगता है, मालूम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। उसका अभ्यास आपको बता दूं कैसे आपको पता लगेगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा अभी अभ्यास शुरू करेंगे ना, अचानक रास्ते में चलते हुए कहीं पत्थर आ गया और आपने थोड़ा गिरने जैसे हो गया ना, तो आपके मुख से हरे कृष्ण ऐसे निकल जाएगा, तो समझना कि अभी आपके जो सेमेस्टर है उसमें आप पास हो गए। कभी कभी आजकल तो सबको गाड़ियों में जाना पड़ता है, मोहल्ली गाड़ी चलाते चलाते हमारे बहुत सीनियर एक भक्त हमारे साथ जा रहे थे, तो बरसात पड़ी हुई थी, गाड़ी स्लिप होके रोड से नीचे गिर रही थी, तो बोलता बच्चा रोको रोको, उसने रोको रोको कहा, हमने बोला राधेश श्याम, बोला अभी गिर के मर जाते तो रोको रोको करते तो कहीं ना कहीं पेड़ बन के खड़े होते कि रोका ही है, कहीं नहीं हिलेगा इधर ही खड़े। तब भगवान का नाम तो याद आया नहीं, तो पूरे जिंदगी का अभ्यास तो बेकार चला गया। तो ऐसे कभी अचानक, आज ही गाड़ी में चले हम आ रहे थे तो कोई स्कूटर वाला ऐसे आगे से आया, बड़ौदा से आ रहे थे, तो उस वक्त हरे कृष्ण शब्द निकला नहीं, बोला मरेगा क्या, ऐसे निकला। तो इसका मतलब अभी एग्जाम कच्चे है, ये बोलते रिपीट करो। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अब डेली लाइफ में जब भी अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आए, पुराने समय मां ऐसे घर पैसे निकलता है, मां कोई तकलीफ है तो मां का नाम निकलता है, क्योंकि मां प्रेम करती है बहुत, आदमी को दुख में मां का नाम निकलता है ना प्यारा। तो ऐसे भगवान का नाम निकलना चाहिए, ये अभ्यास करेंगे तब निकलेगा। ये बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो आप देखेंगे कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, कहीं कहीं आपको थोड़ा टाइम भी मिलेगा कि अब गिर रहे हैं, हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन उसके बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा तब आप भगवान का नाम ले लेंगे। कभी अभ्यास, कई हमारे एक्सपीरियंस जीवन में ऐसे कई बार हुए हैं कि उस वक्त भगवान का नाम लेना जोर से लेते हैं बड़े आनंद से, तो उस वक्त जो भगवान का नाम लेते हैं ना वो दिल से निकलता है, और वैसे अभी जो लेते हैं ना वो यहां से जबान से निकलता है, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन उस वक्त निकलना चाहिए, ये अभ्यास करेंगे तो हमारी भाग्यशाली हम हैं। तो इसके बाद के दो चार श्लोक बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे आज आपके लिए। लेकिन कोई भाग्यवान है जीव, भाग्यवान जीव जो है वो है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। तो भगवान की कृपा का क्या प्रमाण है कि भगवान की कृपा हुई है? भगवान की कृपा हुई है उसका प्रमाण ये है कि आपको साधुओं का संग मिला है, कि आपको प्रभुपाद जी महाराज के इस परम पावन संस्था में से संपर्क आपका हुआ है, और कुछ लोगों को इसमें प्रवेश मिला है। इसकी एडमिशन का फॉर्म भरना होता है ना, उसमें ए माला के ऊपर 108 दाने का मंत्र रोज जपना होता है। जो माला जपता है रोज उसकी एडमिशन कंफर्म होती है, जो आता है प्रसाद खा के जाता है वो पेंडिंग लिस्ट में उसका फॉर्म पड़ा होता है। वो वेट लिस्ट वाला है, वो वेट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, वो एडमिशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन कम से कम स्कूल तक कॉलेज देखा तो सही, यूनिवर्सिटी देखने का भी फायदा है ना, पता तो लगा ना। लेकिन जो जपना शुरू करता है, एक भी माला जपना कर शुरू करता है, तो प्राइमरी का स्टूडेंट तो हो ही गया ना। तो कोई स्कूल में प्राइमरी में कोई पढ़ता हो और पीएचडी पढ़ता हो, यूनिवर्सिटी किसी का हो, तो उसे पूछेंगे कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो प्राइमरी वाले को भी गिनेगा ना, चाहे उसको अभी क ख लिखना भी नहीं आता हो, है ना, क ख लिखना नहीं भी आता है, लेकिन एडमिशन हो गई है, तो जब लिखेंगे कि आपके रोल पे कितने स्टूडेंट हैं, तो बोलेंगे 3000 स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में। अरे 3000 में ग्रेजुएट कितने हैं? ग्रेजुएट मतलब आखिर फाइनल ईयर में तो 200 हैं, लेकिन वो कुछ तो प्राइमरी में अभी एडमिट हुए, आज एडमिट हुए, लेकिन नाम तो उसका आएगा ना कि नहीं आएगा रोल में। तो एक माला जपेगा उसका नाम रोल में चढ़ेगा, बाकी वेटिंग लिस्ट में। तो अब आप एडमिशन आप पक्की कराओ, कंफर्म कराओ, तो ये भाग्यशाली हो तो इस भाग्य का लाभ लो, ऐसा जीवन में फिर लाभ नहीं गया मिलेगा नहीं, मनुष्य जन्म में ये बहुत दुर्लभ है। और इस उम्र में आप करोगे ना तो आप अच्छे नागरिक बनोगे, अच्छे चरित्रवान पिता बनोगे, ऐसे अच्छे चरित्रवान जो है वो बिजनेसमैन बनोगे, अच्छे चरित्रवान कोई पदाधिकारी बने तो बनोगे, हो सकता है आप में से कोई बच्चा बड़ा अच्छा चरित्रवान नेता बने और जो संसार पूरे देश को सदमार्ग पे ऊपर चलाए। तो किसी का मालूम नहीं है कि भविष्य में क्या होना है, लेकिन ये रास्ता आप लोगे जहां भी जिंदगी में जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, गृहस्थ में परिवार में जाओगे अथवा बिजनेस में जाओगे, किसी पॉलिटिक्स में जाओगे, लेकिन ये आपका बेस होगा, ये आपका चरित्र इस तरीके से ठीक बना होगा, जहां भी आप हो जाओगे आप सक्सेसफुल रहोगे, आपका आपकी प्रतिभा बहुत बड़ी माननीय रहेगी और आपका चरित्र बहुत ऊंचा रहेगा। तो इस चीज को सावधानी से बहुत सीरियसली, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कीजिए। ये नहीं तो कोई जरूरी था कि आप वल्लभ विद्यानगर में पढ़ने के लिए आते, और भी कहीं जा सकते थे जहां केंद्र नहीं है, जहां ये सुविधा नहीं है, तो यहां आप अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, हालात यहां आपको हालात ने भेजा है, तो एक अच्छे हालात थे कि आपका संपर्क अच्छी जगह से हुआ है, नहीं तो किसी और गलत जगह पे भी जाके आदमी बैठ सकता है। इस ये उम्र खराब होने के भी है, इस उम्र के अंदर शराब खाने में जाने का भी आदमी को रास्ता आ सकता है, किसी बदसंगत में जाने का भी चांस हो सकता है, तो आपको अच्छा रास्ता मिला है तो इसका लाभ लेना चाहिए। जिंदगी में कहीं भी रहोगे, यहां जो आपको बेसिक शिक्षा दी जाएगी वो आपकी चरित्र की नींव इतनी पक्की होगी, आपका जो बेस होगा इतना स्ट्रांग होगा, उस बेस के ऊपर आप कैसी भी बिल्डिंग बनाएंगे तो वो बिल्डिंग दुनिया को सुख देगी, अपने परिवार को सुख देगी। तो ये लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। कोई पैसा नहीं है एडमिशन का इस यूनिवर्सिटी में, सिर्फ ये भगवान का नाम जपने के लिए संकल्प करना। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु। वैसे 14 लोग कहते हैं, 14 लोग कहते हैं, एक परिभाषा होती है, 3 लोग हैं, एक पहले बताती है अपर मिडिल एंड लोअर प्लानिटरी सिस्टम। ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर के लोग 7 ऊपर के 7 नीचे के, ऐसे जनरली बोलते हैं, हम बीच में हैं, हम बीच का लोक है। तो ऊपर के लोक में ऊपर से ऊपर ब्रह्म लोक है जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, उसके बाद सत्य लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक है जहां ऋषि महात्मा संत साधु रहते हैं, फिर स्वर्ग लोक है जहां पुण्य कर्म करने वाले जाते हैं, फिर ये मनुष्य लोक भूलोक है, भूलोक है जिसके अंदर हम मनुष्य, इसके नीचे फिर पाताल लोक है, तो उस लोकों में फिर थोड़े नीच यूनियों वाले रहते हैं। इसलिए भगवद गीता कहती है सत्व ऊर्ध गच्छन्ति सत्वेस्ता, जो सत्व गुण में होते हैं ऊपर के लोकों में जाते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुण के लोग होते हैं इस मानव जन्म में आते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, और तमोगुण के लोग नीचे के लोगों में, नीच यूनियों में जाते हैं। तो 3 लोगों का ऐसे वर्णन ऊपर नीचे का है। वैसे लोक ऊपर के लोग जो है वो उसमें ब्रह्म लोक, सत्य लोक, तप लोक, जन लोक, मैर लोक, ये। क्या नाम आपका? नीलेश। कौन से लोक में जाना है? वैकुंठ में जाना है। वैकुंठ का मतलब जहां कोई कुंठ ना हो, कुंठ का मतलब कष्ट दुख तकलीफ बीमारी बुढ़ापा जान नहीं हो उसको बोलते हैं वैकुंठ। तो वैकुंठ जाएंगे तो फिर इन लोगों से ऊपर का कौआ है वो, जहां ब्रह्मलोक समाप्त होता है ना, फिर एक रिवर है उसका नाम है व्रज नदी। वो व्रज रिवर के उस तरफ वो एक पर्दा है, उस नदी के वहां एक पर्दा है, उसके बाद वो नदी है, नदी के बाद, पर उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है। वो वहां पहला लोक नीलकंठ का है, तो कहीं उधर फंस नहीं जाना। वो नीलकंठ का लोक पहले आएगा, वहां बाबा भोलेनाथ बाबा का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोक है, शंकर के भक्तों का स्थान ऊपर है, ब्रह्मलोक से ऊपर है, ब्रज नदी के उस तरफ स्पिरिचुअल, ये मटीरियल वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल, थ्री फोर्थ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। उसके ऊपर असंख्य वैकुंठ प्लानेट है, और उसके ऊपर साकेत है, भगवान राम का लोक है, उसके ऊपर गौलोक वृंदावन है, भगवान श्री कृष्ण और उसके भक्तों का स्थान है, ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हैं। हरे कृष्ण। उसके जाने के लिए साधन यही एक है, एडमिशन कंटिन्यू पक्का करो और चले जाओ। और कोई प्रश्न? हाँ बोलो बेटी। उत्तर तो इसका बहुत अच्छा है मेरे पास, लेकिन वो दूंगा नहीं। ऑफेंड आप नहीं, कोई आप में से किसी को बुरा नहीं लगे, ऑफेंस आपको नहीं लगे, तो उत्तर इसका ये है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पेन जो होता है ना, जिसके बराबर और कोई दुनिया में पेन नहीं है, वो चाइल्ड बर्थ का पेन है। मालूम है, बच्चे को जन्म जब मां देती है, जो दर्द होता है, ऐसा दर्द दुनिया में कभी और कोई दर्द है ही नहीं, जिसने सहा है उसको पता है और किसी को पता नहीं हो। और वो जब दर्द होता है तब दुनिया में दोबारा कभी इच्छा नहीं होती है कि इस दुनिया में बच्चा पैदा करना भी है। लेकिन फिर जैसे ठीक होता है फिर दुनिया के अंदर वापस प्रवेश करता है। ये सत्य है कि नहीं? इसको कहते हैं चाइल्ड बर्थ लेबर, इसको कहते हैं लेबर पेन। तो ऐसे मृत्यु का एक्सपीरियंस लेबर पेन की तरह थोड़ी देर होता है, लेकिन वो जैसे खत्म हो जाता है फिर हमारे को संसार के अंदर सुख बहुत अच्छा लगने लगता है, फिर दुनिया की जो एंजॉयमेंट है ना वो अच्छी लगने लगती है, वो उस दर्द को हम भूल जाते हैं। इस तरीके से शमशान वैराग, इसको बोलते हैं शमशान वैराग। एक कथा बताते हैं कबीर जी की। कोई आदमी ने कहा कि कबीर जी से मिलना है, तो कहा कबीर जी के गांव जाएंगे तो उसको मिलेंगे, वो कैसा है? तो बोला एक बहुत बड़ी लंबी टोपी पहनता है। तो लोग उस गांव में गया तो पूछा कबीर जी कहाँ हैं, बोला वो एक कोई आदमी मर गया है, शमशान में गए हैं। तो शमशान के दरवाजे पे गया तो देखा कि सबके सर के ऊपर टोपी पड़ी। अब कबीर को कैसे पहचाने, सबका टोपी एक जैसा पड़ा, देख रहा है तो कबीर कौन सा पीछे खड़ा है। लोग बाहर निकले शमशान से, हाथ में पानी लिया, हाथ में लकड़ी डाल के मारने के, तो आधे लोगों से ज्यादा के ऊपर से टोपी उड़ गई। से बोला ये तो कबीर नहीं है कम से कम, बाकी आधे थे उनके पीछे गया, आधे घर के दरवाजे तक गए जिसमें मृत्यु हुई थी, और वहां घर के दरवाजे पे से आने से वापस हो गए। तो बाकी जो आधे में थे उसमें सिर्फ 5-6 के ऊपर टोपी रही और सबकी टोपी उड़ गई। जब बाकी 5-6 बचे तो ये उसके अंदर चला गया उनके पीछे, तो 4 और की टोपी उड़ गई, बाकी एक के ऊपर टोपी बची। तब उसको पकड़ा कि आप कबीर जी हैं? बोला हाँ। बोला मैं आपको ढूंढने के लिए आया था, लेकिन आपको मिल तो गए, बाकी बातें बाद में करेंगे, ये समस्या क्या है बताइए? जब मैं उधर गया तो सबके सर की टोपी थी, मैं टोपी वाला ढूंढ रहा था, फिर आधों की चली गई, फिर 5 की बची, अभी आपकी अकेले की है। बोला बेटा जब शमशान में हम जाते हैं ना, कोई आदमी मरता है तो दिल कहता है अरे कितना अच्छा था, कल हमारे साथ घूम रहा था, आज देखो चला गया, क्या रखा है संसार में। उस वक्त सबको वैराग लग जाता है, संसार में कुछ नहीं है, भगवान का नाम लेना है। अंदर जब तक होते हैं तो वैराग होता है। दरवाजे निकलते आधे लोग कहते हैं अरे भाई घंटा लग गया, अब दुकान खोलना है, क्या है सन। बाहर निकलते ही आधों की टोपी उड़ जाती है। बाकी जो आधे बचते हैं वो जाते हैं घर के दरवाजे, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं, लेकिन वहां जाते हैं तब कहते हैं हम जाते हैं कुछ आप बंदोबस्त करना पड़ेगा ना, भोजन का इनके घर में दुख हुआ है तो कोई भोजन का कहीं टेंट वाले को बोलना पड़ेगा, दरी मंगाने पड़ेगी, तो वो निकल जाते हैं। तो भगवान वाली बात भूल जाती है, संसार की बात, या टोपी उड़ जाती है। चार घर वालों को दुख होता है तो उनकी टोपी पड़ी होती है, क्या दुनिया में रखा है, तो सब कुछ बाबा का था, बाबा चला गया, अब क्या करेंगे। तब कोई कहता है चिट्ठियां तो लिखो मृत्यु की, उसको लिखनी पड़ेगी ना चिट्ठी, ये चाचा को फोन करना है ना, काका नु फोन करियो कि नहीं करियो, तो टोपी उड़ गई। तो कबीर ने कहा ये हमारा वाला वैराग स्थाई है, शमशान वाला वैराग नहीं है, ये टोपी परमानेंट है, ये नहीं हटेगी, बाकी टोपियां हट जाएंगी। तो नियर डेथ का एक्सपीरियंस होता है, थोड़ी देर के लिए वैराग आता है, वो स्थाई बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिन लोगों को वैराग है उनका संग करने से वैराग आएगा, संसार में जाएंगे तो उनको वैराग नहीं है, वहां तो वैराग है नहीं, तो वैराग कैसे आएगा। देखो आप यहां सत्संग में एक घंटा अभी आए हैं ना, ये एक घंटा ऐसे है कि समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो संदलवुड का सेंट लगा दिया जाए, हाँ संदल का सेंट लगाए फर्स्ट क्लास एक घंटे में, ठीक है। और बाकी जिंदगी के दिन रात में कितने घंटे हैं, 23 घंटे बाकी बचे ना, वो एक बहुत बड़े गटर के अंदर आपको उतार दिया जाए। जब आप बाहर निकलेंगे तो अंदर से सुगंध किसकी आएगी, संदल की आएगी कि गटर की आएगी। तो हम एक्सपीरियंस करते हैं त्याग का, वैराग का, भक्ति का आधे घंटे घंटे के लिए, और बाकी सारा संसार के अंदर एक्सपीरियंस हमारा जो होता है वो दूसरा होता है, तो उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, इसका प्रभाव कम रहता है। ये कभी कभार कोई मरता है तब याद आता है, हाँ जीते तो रोज हैं, इसलिए तो दुनिया के भोग में रोज लगते हैं। इसलिए नित्य नेम से सुबह उठ के भगवान का नाम जपने का आदत डालेंगे तो आस्ते आस्ते भगवान से प्रेम होने लगेगा, तो फिर मौत का भोग करने की जरूरत ही नहीं है, मौत से डरने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मौत का समस्या ही हमारा खत्म हो गया। धीरज तत्र न मोहयते, धीरजवान को मोह की परवाह नहीं होती। भगवत गीता के पढ़ने वालों को लिखा है सुधीर भोगता, वो धीर नहीं है सुधीर है, सुधीर मतलब धीरजवान से भी ज्यादा महान धीर है, वो सुधीर है जो भगवत गीता पढ़ता है, उसको तो फिर कोई संसार की चिंता नहीं रहेगी बेटा। इसलिए निश्चित रूप से नेम से भगवान का नाम जपने का दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब शास्त्र का अध्ययन भगवत गीता का, और स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन भी कि हम कहाँ खड़े हैं, देखें तो सही आज अच्छाई कोई हमसे हुई कि नहीं, अरे आज हमसे कोई बुराई तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हो गई, शाम को बैठ के सोचो तो सही कि आज कोई किसी को आपने दुखाया तो नहीं, दुखाया तो चले जाके दूसरे दिन उसको बोला सारी मैंने कल तो गुस्से में आपको कह दिया, अब मेरे को माफ कर दो, तो आपका अंदर से कचरा निकल जाएगा जल्दी, अंदर जम गया तो निकलना बहुत मुश्किल है। कभी स्टेन होते हैं ना तो उसी वक्त धोते तो निकल जाते हैं, पड़े रहते हैं तो फिर नहीं निकलते, फिर तो धोबी से भी नहीं निकलेंगे। तो जल्दी निकालो कचरा, जल्दी निकालो कचरा, आए निकालो, आए निकालो, अच्छाई को भरते जाओ भरते जाओ। हरे कृष्ण। क्या नाम बेटा? क्या हरिप्रिया? गिरधारी प्रिया। हरे कृष्ण। गिरधारी का शरण लो तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गिरिवर धारण जिसके नाम किया उसका है गिरिधारी। गिरिधारी का मतलब जिसने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो भगवान दुनिया में कोई किसी से प्रेम करता है ना, उसको पता है क्या बोलता है, तुम्हारे ऊपर कभी कष्ट आएगा ना तो मैं पहाड़ कष्ट का उठा लूंगा, लेकिन आज तक किसी ने नहीं उठाया, सब झूठ रहे। लेकिन भगवान ने कह दिया कि तेरे ऊपर कष्ट आएगा तो पहाड़ उठाऊंगा, उसने पहाड़ उठा लिया, वो सत्य कर दिया, अपने भक्तों के ऊपर कष्ट आया तो भगवान ने पहाड़ उठा लिया। हम कहते हैं हम पहाड़ उठाएंगे, लेकिन हम उसकी जेब के अंदर से माल उठाते हैं। हरे कृष्णा। एक और प्रश्न नहीं तो प्रसाद। हाँ एक और बच्चा है, क्या नाम बेटा? विशाल। हाँ बोलिए विशाल। बहुत अच्छा है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके पहले वाला अर्जुन का प्रश्न यही है, चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ तस्याहम नग्रम मन्य वायुरिव दुष्करम। अरे ये मन बहुत चंचल है, इसको कैसे वश में करूं, ये तो हवा को वश में करने से भी ज्यादा मुश्किल है, तो कैसे करूं, ये बहुत बड़ा एक अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट टाइम एक पूरा इसके ऊपर प्रवचन रखा जाए। कल संडे को आप आओगे क्या? संडे को क्या करते हैं आप लोग? फ्री हैं? क्यों भाई, कहां है अब हमारे मंदिर का अध्यक्ष और साधु संत कहां है, क्या विचार है सबका? कल संडे वाले प्रोग्राम में इसी ये टॉपिक रखें, हाँ यही टाइम संडे वाले सत्संग में यही टॉपिक रखें कल जी, उसी में आ जाएं तो ठीक है ना सब? क्यों, सत्यानंद प्रभु से पूछ लो कहां है, या इनका अलग दोपहर में रखे? नहीं अब कुछ संडे है, कल तो संडे है, संडे का मतलब है सोएंगे, तो आप जागेंगे कब ये बताइए। हाँ बेटा दोपहर में, दोपहर ना से दोपहर में, दोपहर का मतलब 11 बजे से, 11 से साढ़े बारह तक जाग जाएंगे 11 बजे? हाँ दो से दो बजे हम नहीं जागेंगे। शाम वाला एक ही क्लास सबके लिए, हम शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक, और विशाल विषय है मन को कैसे वश में किया जाए, ठीक है? आप आना कल, ऐसे मैं ढूंढूंगा, पहले बोलूंगा विशाल कहां है, नहीं तो टॉपिक खत्म। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रसाद लीजिए, लेकिन उससे पहले सूप पीजिए। देखो प्रसाद से पहले सूप पिलाते हैं, सूप का मतलब भूख ज्यादा लगे तो बैठ के थक गए, उठिए कीर्तन कीजिए और ये हरि नाम का सूप पीजिए और फिर प्रसाद पाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।